ओम शांति। बाबा की सीजन में मधुबन में रहना, सेवा का भी भाग्य लेना और बाबा से मिलन का आनंद भी लेना, ये डबल भाग्य लगता है ना। और बाबा की मुरलियां भी ऐसी चल रही हैं जो बिल्कुल मन को भी और तन को भी आनंद में डुबाने वाली हैं। तो अपने भाग्य पर हम सबको बहुत नाज है, सबसे ज्यादा इस बात की कि आप सब मधुबन वरदान भूमि में हैं, उस भूमि में जहां पे सब आने को तरसते हैं। यहाँ का कण कण हर चीज बाबा की याद दिलाता रहता है। तो बाबा ने इतना सुंदर भाग्य यहाँ रहने का दिया है, तो बाबा की जो हमसे आशाएं हैं उन्हें भी हमें ही पूर्ण करना है ना। तो इस सीजन में बहुत सारी बातें बाबा ने कही हैं, लास्ट मुरली में भी कई बातें कही हैं, लेकिन एक बात पर विशेष हम आज चर्चा करेंगे जो बाबा ने जाते जाते हम सबको कहा। कौन सी बात कही, कौन सी बात कही? खुश रहो और खुशियां बांटते रहो, है ना। सबसे सहज सा कार्य दिया है। सहज है या मुश्किल है? हाँ जी, सहज है ना, सहज है। संसार में यदि किसी से पूछें कि भाई सबसे सहज कार्य क्या खुश रहना है, तो आज के दौर में तो कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि किसी के चेहरे पे भी मुस्कान नहीं है। यदि आज कोई बहुत मुस्कुराता होता है या कोई बहुत खुश होता है तो लोग उनसे क्या पूछते हैं कि क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हैं। मतलब रोज वो खुश नहीं रहते, यदा कदा कभी कुछ मिल गया तो खुश है। और बाबा ने कहा मधुबन में तो बाबा के सब बच्चे तो हमेशा खुश है, आनंदित है, प्रसन्न है। तो एक शब्द पर हम खुश तो रहते हैं, लेकिन सदा खुश जो बाबा हमें देखना चाहते हैं उस पर बहुत गहराई से वर्क करना है ना। क्योंकि कुछ साल पहले हमारी विदेश की सभी बहनें बाबा से जब मिल रही थी, अव्यक्त बाप दादा से, पीछे से किसी ने कहा कि बाबा कई बार बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो बाबा ने कहा टेंशन, यदि आप लोगों को टेंशन हो जाए तो फिर संसार वालों का क्या होगा। वैसे यदि हम खुश नहीं रहेंगे, हम गम में रहें, हम दुखी हो जाएं, तो फिर संसार वालों का क्या होगा। इसलिए बाबा चाहते हैं कि संसार में तो दुख के पहाड़ टूटने ही हैं, तकलीफें तो बढ़ती ही जानी हैं। इसलिए कम से कम बाबा के बच्चे अपनी खुशी से संसार वालों को ये संदेश दें कि हमें क्या मिल गया है। हमारे चेहरे से और चलन से बाबा ये सेवा चाहते हैं ना। तो सिंपल से फॉर्मूला पे आज थोड़ा विचार करें हम लोग कि कैसे हम सदा खुश रह सकते हैं। बहुत सारी बातें और चिंतन हो सकती हैं, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला ABCD का फॉर्मूला याद रहता है ना हम लोगों को, उस फॉर्मूला पे हम लोग थोड़ा चिंतन करते हैं और शुरुआत पीछे से करते हैं। पीछे से अर्थात डी से, क्योंकि हमें ए ग्रेड में आना है ना, नंबर वन में आना है। सदा खुशी के लिए क्या हो या खुशी गुम, कौन सी बातें हमारी करती है? डी अर्थात ड्रामा, ये भी अच्छी बात है। और डी अर्थात क्या करना होगा हमें यदि खुश रहना है। तो कुछ बातें हैं जो हमें खुश नहीं रहने देती हैं। डी अर्थात हमें डिटैच होना सीखना होगा। डिटैच, डिटैच किससे? एक तो पास्ट से हम बहुत ज्यादा अटैच हैं, पास्ट की बातें हमें याद आती रहती हैं, पास्ट हमें खींचता रहता है, और पास्ट की बातों के कारण हम दुखी होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, या हमारी खुशी गुम होती रहती है कि काश हमने ऐसा न किया होता। शाम को ही एक बहन का फोन आया था, कह रही थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। अब उस बात को सोच के मैं बहुत दुखी रहती हूँ कि काश मैं भी कुमारी होती। अब मैं कुमारियों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने अपने माता पिता की बात क्यों मान ली। तो जो कुमारियां यहाँ बैठी हैं और कुमार बैठे हैं तो थोड़े सावधान हो जाए। पेरेंट्स तो जोर डालते ही हैं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर है। ब्रह्मा बाबा कहते थे तुम बकरी थोड़ी हो, तुमको कोई कहीं भी पकड़ के बांध देगा, हाँ शक्ति बनो, शेरनी बनो। तो बहुत दुखी हो रही थी। तो पास्ट, पास्ट में लिए हुए कुछ निर्णय या कुछ बातें, कुछ घटनाएं, हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ बड़ी चीज हो गई है, वो बार बार यदि याद आता रहता है, यदि हम उससे चिपके हुए हैं, हमारी खुशी जाती रहती है। ओवर एंड ओवर अगेन हम उस चीज को सोचते रहते हैं, और जबकि बाबा ने हमें कहा है पास्ट को पास्ट करो, बिंदी लगाओ। एक सर्वे ये कहता है, हम सबको विचार करना है, एक सर्वे ये कहता है कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है, और केवल 5% अपने प्रेजेंट में रहता है। अब यदि 80% थोड़ा सामने आ जाए बहने, थोड़ा सामने आ जाइए, माताओं को बैठने में जगह मिली, आगे आ जाइए। अब विचार करें यदि 80% आप पास्ट में हैं, तो पास्ट में ज्यादातर जब हम ज्ञान में नहीं थे तो कैसी घटनाएं हुई हैं हमारे साथ, दुखद घटनाएं ही ज्यादा हुई हैं ना, और वही चीजें फिर हम सोचते हैं कि फिर कल्प बाद ऐसा ही होगा, ये चीज बदल नहीं सकती क्या, और उस चीज को जबकि हमें पता है कि बदली नहीं जा सकती, फिर भी वही वही बार बार हमारा ध्यान जाता है, वो हमें दुखी करता रहता है। जैसे सुख के लम्हों को याद करने से हम सुखी होते हैं ना, हम बैठे बैठे, आप देखो कोई छोटा बच्चा होता है, वो कभी मुस्कुराता है और कभी रोता है, क्यों? पास्ट के यदि सुखद चीजें उसे याद आती हैं तो वो मुस्कुराता है, मतलब पिछले जन्मों की, और जब दुखद बातें याद आती हैं तो वो रोता है। हमारे साथ भी यही होता है, जब हमें बहुत अच्छी याद आती हैं, सुख भरे दिन याद आते हैं, तो अकेले बैठे भी हम मुस्कुरा रहे होते हैं, और यदि दुख भरे दिन याद आते हैं, किसी ने बहुत ज्यादा कष्ट दिया है, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो पास्ट की बातों से हमें डिटैच होना होगा। पास्ट पूरा हुआ ना, हम मरजीवा बन गया ना, बाबा के पास आए मरजीवा हो गया ना, तो पास्ट से डिटैच होने की आदत, ये एक चीज हमें सुख की ओर लेकर के चलेगी। बिंदी लगा दें उसे और आगे बढ़ें। तो एक पास्ट की ये जो बुरी चीजें हैं, पास्ट की स्मृतियां हैं, और दूसरी चीज, एक बार एक व्यक्ति गया, एक युवक गया, गृहस्थ था एक सन्यासी के पास, कहा मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, आप कुछ बताइए युक्ति। उस सन्यासी ने कहा कि ठीक है, हम जंगल की ओर चलते हैं, ये एक बोझ है, इसको तू अपने सिर पे रख ले, मैं जंगल में चल के तुमको राज बताऊंगा कि तुम कैसे हमेशा खुश रह सकते हो। अब वो जाने लगे, 2 किलोमीटर हुआ, 4 किलोमीटर हुआ, अब एक बोझ उसके सिर पे रखा हुआ था। सन्यासी ने कहा ठीक हो तुम? बोले हाँ ठीक हूँ। और 2 किलोमीटर चले, फिर पूछा ठीक हो? बोले ठीक तो हूँ, लेकिन ये यदि बोझ नहीं होता सिर पे तो ज्यादा ठीक होता, ज्यादा खुश होता मैं। तो सन्यासी जी ने उसको यही कहा, यदि पास्ट का बोझ लेकर के तुम चलते रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकोगे, इसलिए इस बोझ को उतार दो। पास्ट हो गया ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो हुआ स्टॉप। वर्तमान, गीता का सारा सार क्या है, हे अर्जुन तू वर्तमान में रह, वर्तमान को सुंदर बना। तो हम पास्ट से डिटैच हों, एक बात। दूसरी बात, हमारी कोई कमी, हमारी कोई आदत या कोई संस्कार जो हमारे साथ चलती आ रही है, उसके कारण हमसे कोई अवज्ञा हो जाती जो श्रीमत के अनुसार नहीं है। तो यदि श्रीमत के अनुसार कोई कार्य नहीं है तो मन खुश होगा या दुखी होगा? तो अपनी उस आदत को, उस कमजोरी को या उस संस्कार पे थोड़ा हमें ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है जिसके कारण हम श्रीमत के विरुद्ध कुछ कर लेते हैं। और यदि वो गलतियां होती रहती हैं, वो यदि विकर्म होता रहता है तो मन तो खाएगा ना। इसीलिए हमें बहुत दृढ़ता से अपने ऊपर ही बहुत कड़ी नजर रखते हुए अपने उस आदत या संस्कार पर पूरी तरह कंट्रोल करना होगा, ना तो वो आदत पक्की भी होगी और बार बार उस गलती को करके हम दुखी भी होते रहेंगे। जैसे कईयों को सुबह अमृत वेले अच्छे से सोने की आदत होती है, वैसे भी ठंड है तो रजाई बहुत आनंद देता है ना, तो रजाई के अंदर बिल्कुल घुसे रहते हैं, वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती है। एक कुमार था, उसको भी बहुत नींद आती थी सुबह सुबह। उसने अपने बेडरूम में एक बड़ा सा स्लोगन लगा रखा था कि तुम्हें भगवान से रजाई लेनी है इसलिए रजाई को लात मारनी है। तो जैसे उसकी आंख खुलती थी, सामने नजर जाती थी, फट से अपने रजाई को लात मार के निकल जाता था। तो आप सब भी रजाई को लात मार देते हैं ना, रजाई को लात मारनी है, रजाई को लात मारनी है, किसको? यदि अभी रजाई को लात मारेंगे तो रजाई मिलेगी। इसलिए चुन लें कि हमें रजाई चाहिए या रजाई चाहिए। तो ये एक आदत, मान लीजिए सुबह हम नहीं उठते हैं, मन में क्या आता है बाद में? अरे सुबह सुबह हमारा मिस हो गया, अवज्ञा हो गई। परमात्मा आज्ञा है कि सुबह उठ करके बाबा से मिलन मनाओ, याद में बैठो, तो वहां से ही थोड़ा सा दुख शुरू हो जाता है ना। मन खाता है या नहीं खाता? खाता है। इसलिए चलिए कभी हो गया कोई नहीं, मन को तैयार करें कि आज सारे दिन और अच्छी तपस्या करेंगे, गहरी तपस्या करेंगे और कल के दिन जरूर उठेंगे, पक्का करें, दृढ़ता लाएं। लेकिन यदि बार बार होता रहता है तो वो फिर दुख के भी हमारे संस्कार बनते जाते हैं। और बाबा ने कहा है यदि खुशी के, सुख के संस्कार होंगे तभी तो तुम दूसरों को सुख दे पाएंगे ना। जब दुखी आत्माएं आए और आपके पास आते ही उनके दुख दूर हो जाएं, तब कहेंगे ना सुखदाता के बच्चे हैं। लेकिन ये तब होगा जब हमें भी दुख की अविद्या होगी। इसलिए दूसरी बात जिससे हमें डिटैच होना है वो है हमारी कमी, हमारे अवगुण या वो आदत जिसके कारण बार बार चाहे दिनचर्या में कहीं अवज्ञा हो जाती है, चाहे अन्य किसी बात में। इस पे आपको नजर रखनी होगी और आपको चेंज करना हो। कोई दूसरा कहेगा अच्छा नहीं लगता है ना, यदि कोई दूसरा कहे अच्छा लगता है नहीं, इसीलिए बाबा ने खुद कहा है तुम खुद ही खुद के टीचर बन जाओ। तो दूसरा डिटैच होना है हमें अपने इन अवगुणों से, होना है ना, या अटैच रहना है? अटैच तो नहीं रहना है पुरानी आदतों से, छोड़ना ही है ना, छोड़ना ही है ना। कब छोड़ दिया? कब का? हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने, कोई पुरानी चीज रही नहीं ना, बहुत सुंदर। यदि आ जाए तो बोल दो भैया तुमसे हमने तलाक ले लिया है, अब तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। तीसरी चीज जिससे हमें डिटैच होना है वो है हमारी इच्छाएं और कामनाएं। बहुत गहरी है ये और इन पे भी बहुत अंडरलाइन करने की आवश्यकता है हम सभी को। यदि इच्छाएं और कामनाएं हैं तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं यदि इच्छाएं 100 हैं तो तुम्हारी खुशी 0 हो जाएगी, और यदि इच्छाएं कामनाएं 0 हैं तो तुम्हारी खुशी 100 हो जाएगी। तो ये एक सीधा सीधा एक क्या कहें कि आप देख सकते हैं कि यदि इच्छाओं की मात्रा ज्यादा है तो आपकी खुशी की मात्रा उस तुलना में कम होती चली जाएगी। इसीलिए हमें अब कोई इच्छा नहीं ना, हम सुनाते तो हैं दूसरों को, क्या सुनाते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। और हम केवल सुनाने वाले तो नहीं है ना, जीवन में लाने वाले हैं हम, पोंगा पंडित नहीं है बाबा कहते हैं, केवल ज्ञान सुनाने वाले नहीं, आचरण में लाने वाले। तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं रह गई है, मेरी तो कोई कामना नहीं है किसी भी व्यक्ति विशेष से, क्योंकि चौथी बात जहां से डिटैच होना है वो यही है संसार, संसार को देखने की इच्छा, संसार से सुनने की इच्छा या संसार में बोलने की इच्छा, कोई भी सांसारिक इच्छा हमारी खुशी को कम करती चली जाती है। संसार से डिटैच, साक्षी। बाबा कहते हैं जितने ज्यादा न्यारे होंगे उतने ज्यादा प्यारे भी होंगे, और जितने ज्यादा हम यहां से डिटैच होंगे उतनी ज्यादा हमारी खुशी बढ़ेगी, क्योंकि यहां संसार में गम ही गम है ना, अशांति ही अशांति है, इसलिए यहां का अटैचमेंट चीजें आपको गम या दुख ही देने वाली हैं। और बाबा कहते हैं जितने डिटैच अर्थात साक्षी होंगे, तो साक्षी होंगे तो भगवान के साथ का अनुभव होगा, और भगवान साथ है तो किसी प्रकार का गम नहीं है, दुख नहीं है, अशांति नहीं है। इसलिए साक्षी होकर के बाबा के साथ रहें और इन सब चीजों से डिटैच हों। तो डी अर्थात अपने आप को जितना डिटैच हम करेंगे उतनी ज्यादा खुशी हमें प्राप्त होगी, और जितना ज्यादा इन चीजों से अटैच हैं हमारी खुशी नष्ट होती रहेगी, कमजोर होते चले जाएंगे हम। वैसे भी देता वो है जो डिटैच, दूसरों के हाथ वो खोलता है जिसके हाथ खुद खुले हुए हैं, दलदल से दूसरों को बाहर वो निकालता है जो खुद दलदल के बाहर है। यदि मैं इस चीज से, संसार से डिटैच हूं, तभी मैं संसार वालों को जो दुखी हैं, अशांत हैं, उन्हें शांति और खुशी दे सकता हूं। इसीलिए डिटैच होने की प्रैक्टिस भी बार बार हम करें। बाबा वर्षों पहले ये कह आए हैं, एक मिनट हो, दो मिनट हो, पांच मिनट हो, बीच बीच में डिटैच होने की प्रैक्टिस करते रहो, अशरीरी होने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आने वाले समय पे पड़ेगी। हमारा फाइनल पेपर भी एक सेकेंड का ही है ना, एक सेकेंड में जो डिटैच हुआ पास विद ऑनर हो गया, और यदि यहां से अटैच हैं तो एक सेकेंड में डिटैच नहीं हो पाएंगे। अभी से हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी, अभी से हमें ये ध्यान देना होगा। तो डी डिटैच, ठीक है, डिटैच ना, मधुबन में तो सबसे डिटैच है ना, ये यहां भी अटैच है नहीं ना, मधुबन में तो किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, मधुबन से जाने के बाद भी संसार में रहते हुए भी सबसे डिटैच। दूसरी चीज सी, सी अर्थात हम कंपेयर नहीं करें किसी से अपने आप को, लेकिन कोऑपरेट करें। कंपेयर करते हैं किसी से तो हमारी खुशी चली जाती है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है, या इसकी सेवा मेरी सेवा से अच्छी है, या इसका रूम मेरे रूम से ज्यादा अच्छा है, इसका वॉशरूम या वॉशरूम में रखी हुई बाल्टियां हमारे वॉशरूम या हमारी बाल्टी से कहीं ज्यादा अच्छी है, हमें भी वैसी मिलनी चाहिए, राइट। छोटी सी चीज कह रहा हूं, कंपैरिजन। जहां हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ वहां हमारी खुशी डाउन हो जाती है, और हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि आप बेस्ट हैं संसार में, आपका पार्ट, आपका रोल, जो आपको मिला हुआ है वो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे कंपैरिजन नहीं। यदि चांद कंपेयर करने लगे अपने आप को सूर्य से कि उसमें जो तेज है वो मुझ में भी होना चाहिए, या सूर्य कंपेयर करने लगे अपने आप को चांद से कि उसकी शीतलता मुझ में भी होनी चाहिए, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा ना। हर एक का अपना अपना रोल है, अपना अपना स्थान है। मेरा रोल मुझे बेस्ट तरीके से प्ले करना है, मैं खुद को पहचान जाऊं। कंपेयर हम वहां करते हैं जहां हमने अपने आप को खुद अच्छे से नहीं पहचाना है। यदि खुद को अच्छी तरह हमने पहचान लिया तो फिर हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, अपने पार्ट में संतुष्ट और खुश रहेंगे। इसलिए पहचानिए अपने आप को, अपने श्रेष्ठ भाग्य को भी और अपने पूरे कल्प के पार्ट को भी। चलिए पूरा कल्प ना भी दिख रहा हो, कम से कम वर्तमान तो दिख रहा है। संसार में कितनी ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला है, या ज्ञान मिल भी गया है तो कितने ऐसे लोग हैं जो मधुबन नहीं आ पाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान से नहीं मिल पाते हैं, दादियों से नहीं मिल पाते हैं, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि मुझे इस वरदानी भूमि में रहने का और इस भाग्य को प्राप्त करने का अवसर मिला है, वाह रे मेरा भाग्य। इससे कंपैरिजन नहीं, लेकिन कॉपरेट अर्थात सहयोग दें। जितना हम दूसरों को देते हैं उतनी ज्यादा हमें खुशी मिलती है। अनुभव है ना सभी का, जितना लेते हैं, लेने वाले को मैंने कभी खुश नहीं देखा है और ना आपने कभी खुश देखा होगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होते जो लेता रहता है, लेता रहता है। लेकिन देने वाला चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो लेकिन बहुत खुश रहता है। एक सेठ जी थे, बहुत उदास रहते थे, बहुत धनवान थे लेकिन बहुत उदास रहते थे। उनका एक दोस्त आया, उस दोस्त ने कहा कि यार तू उदास क्यों रहता है, तेरे पास तो इतनी संपत्ति है कि तेरी 7 पीढ़ियां तक खा सकते हैं। तो कहता है इसीलिए तो उदास हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो बटोर रहे हैं, बटोर रहे हैं, बटोर रहे हैं, ले रहे हैं लेकिन फिर भी खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं है। लेकिन मेरे पास यदि एक रोटी भी है, एक टोली का मुझे टुकड़ा भी मिलता है और उसे मैं 4 लोगों को बांट देता हूं थोड़ा थोड़ा, बाबा के सामने जो भोग लगता है थोड़ा सा आता है और उस थोड़े से भोग को भी जब हम सबको बांटते हैं तो जिसको भी देते हैं उसे कितनी खुशी होती है। बाबा के सामने ये भोग, बाबा ने ये भोग स्वीकार किया, वो भोग हम ले रहे हैं। बांटना, देना, ये हमें अपने संस्कार में लाना है ताकि हम हमेशा खुश रह सकें। लेने वाली आदत नहीं, हम सब देवता बनने वाले हैं ना, और देवता हमेशा देता रहता है, कोई हमें दे या ना दे। कई बार ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि इसे मैं दूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना। मान लो मेरे पास कुछ है भी तो नजर बहुत सूक्ष्मता से विचार कीजिएगा, हम उन लोगों को चुनते हैं कई बार जिनके साथ हमारा लेन देन है, उनसे हमें कुछ मिलता है या उनसे हमें भविष्य में कुछ काम है, उनके पास जाना आना पड़ता है, तो चलिए ये चीज मैं आपको देता हूं। होता है या नहीं होता, सूक्ष्मता से हमें देखना है। नहीं, बाबा की स्थिति कैसी है, जो सामने आ गया सब मेरे अपने हैं, इसलिए मेरे पास जो भी है, जो भी सामने है मैंने उनको दिया, ये समान भाव है। और जब आप ऐसे निस्वार्थ भाव से देते हैं तो सामने वाले से आपको कितनी दुआएं मिलती हैं। इसलिए देना, मैं नहीं, मैं कितना ले लूं। बाबा ने हमेशा दूसरों को आगे किया और जब आगे किया तो खुद भी आगे रहे ना। तो किसी ने कहा है, बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि पूरी जिंदगी हम खुशी की तलाश करते रहे, खुशियां बटोरते रहे, खुशियों की तलाश करते रहे, लेकिन जिंदगी के अंत में जाकर के पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। इसीलिए अपने हर पल में हम इस खुशी को, इस आनंद को, जो भी मेरे पास है उसे मैं बांटना सीखूं, अपने संकल्प से, अपने बोल से, अपने कर्म से, कर्म से जितना सहयोग हो सकता है। कोई सेवा कर रहा है, उसे हमारी आवश्यकता है, हम सेवा में मदद कर दें। मेरी सेवा भले नहीं है लेकिन उसे जरूरत है, मैं जा करके उसे मदद कर दूं यदि मैं फ्री हूं तो, हमेशा वो याद रखता है। इंदौर में पहले पहले सेवा, बहुत बड़ा एक मेला लगा हुआ था, मेरी सेवा पानी पिलाने के थे और मैं कहीं दूसरी जगह पे ट्रैफिक में फंस गया था और भोजन का समय हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, क्या होगा, भोजन के लिए लोग सब आ जाएंगे, पानी लेने का समय आएगा, लोग मुझे ढूंढेंगे, क्या होगा, मैं सोच रहा था, संकल्प चल रहे थे। अब जैसे जब मैं वहां पहुंचा, भोजन तो शुरू हो गया था, सब भोजन कर रहे थे, लेकिन वहां जो एक बहन जी थी उन्होंने सब अरेंज कर दिया था कि सब पानी से, पानी आराम से पिए, सहयोग। तो वो छोटी सी बात थी लेकिन अब तक ना जाने कितनी सारी घटनाएं होंगी, लेकिन वो एक चीज कि समय पे उन्होंने मुझे मदद की थी जब मुझे आवश्यकता थी, वो घटना याद रहती है। इसीलिए जब भी किसी को भी आवश्यकता है, जहां कहीं भी आपको दिखाई देता है कि यहां कर्म से मैं सहयोग प्रदान कर सकता हूं, अपना वो सहयोग सामने वाले को अवश्य प्रदान करें। वो सहयोग हमेशा के लिए उस आत्मा को याद भी रहती है और दिल से वो आत्मा आपको
दुआएं भी प्रदान करती है, क्योंकि आपने उन्हें मदद की। तो दें, सहयोग प्रदान करें, ये आपको भी खुशी प्रदान करेगी। और साथ ही बोल के द्वारा भी हम दें दूसरे को। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी बोल से तुम दूसरों को स्वमान दो, अपनी बोल से दूसरों को सुख दो। ऐसे बोल बोलो दो दूसरों को राहत मिले, आथत मिले, शांति मिले, सुकून मिले। बोल में तो कोई खर्च नहीं हो रहा है, और यदि हम ऐसे बोल दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को कितनी खुशी प्राप्त होती है। यदि किसी के अंदर कोई विशेषता है, कोई गुण है, यदि आप कहते हैं कि आपके अंदर ये बहुत सुंदर विशेषता है, उसको कितना सुख मिलता है, और वो अपने उस गुण को और ज्यादा सेवाओं में लगाता है। उसका पुण्य तो हमें मिला ही मिला, लेकिन साथ साथ अपने बोल के द्वारा उसको सुख देने का भी सुख हमें प्राप्त हुआ, खुशी हमें प्राप्त हुई। और वहीं यदि आप किसी के अवगुण, किसी की बुराइयां करते रहते हैं, तो दूसरा भी आपके अवगुण और बुराई ही करेगा ना, और माहौल खुशनुमा नहीं होगा, लेकिन और ज्यादा गमगीन हो जाएगा। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, सहयोग में हम सबको अप्रिशिएट करें, सबकी महिमा करें। जैसे बाबा हमारी महिमा करते हैं, हम सबकी विशेषताओं को देखते हुए सबकी विशेषताओं का वर्णन करते रहें, तो इससे सुख देना ये सहज हो जाता है और सुख लेना सहज हो जाता है ना? एक दूसरे को यदि आप नहीं भी जानते हैं, तो भी एक सुख भरा बोल अपने पड़ोसी को बोल के देखें। चलिए अपने पड़ोसियों को एक सुखदायी बोल बोलें सभी। चलिए प्रैक्टिकली करें, जो भी आपके पड़ोस में है उसको एक सुखदाई बोल बोलें। मुड़ जाए, पड़ोस में कोई है ना आपके या नहीं है? आप सब डिटैच हो गए। चलिए बोलिए प्यार से अपने पड़ोसी को, एक एक चूज कर लीजिए। सामने वाले को भी बोल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को बोलिए अभी। चलिए चलिए प्रैक्टिकल करेंगे, अपने पड़ोसी को एक बहुत सुंदर ऐसा वाक्य बोलिए जो उसका चेहरा खिल जाए। बोलिए बोलिए, या याद नहीं आ रहा है कि क्या बोले। चलिए जिन्होंने बोला उनके चेहरे पे तो मुस्कान मुझे दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है। बाबा के चेहरे को देख करके हम ये तो सीखते हैं ना कि बाबा जैसे मुस्कुराते रहते हैं, बाबा जितने खुश हैं, हम बाबा के बच्चे भी वैसे ही खुश रहें। और ये खुशी तभी आती है जब आपस में ऐसे बोल करके भी हम अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो स्वमानदायी, सुखदायी, या फिर जो विशेषताएं हैं सामने वाले की, उसका वर्णन हम जरूर करके सुख देंगे। कल करेंगे सभी ये? चलिए आज आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन आपके कमरे में जितने लोग हैं ना, या सेवा साथी जो भी हैं, सबको ना आप सुखदाई बोल बोलना। उनकी जो विशेषता है, उस विशेषता को जरूर उसको बताना कि आपके अंदर ये विशेषता है। कर सकते हैं? या लड़ाई हो गई है अपने कमरे वाले से कि 10 लोग हैं, 9 को, मैं 8 को तो बोल दूंगी, लेकिन इस एक को नहीं बोलूंगी, हाँ ये एक मुझे परेशान करती है, ऐसा तो नहीं है? कमरे में सबके साथ प्यार से है ना, किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं ना, लड़ाई होगी तो खुशी तो नहीं रहेगी ना, उसका चेहरा देखेंगे तो फिर से क्या होगा। इसलिए बोल से हम जरूर दूसरों को सुख देंगे। और तीसरा, मनसा, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी आने वाले समय में भी, हम मनसा से सहयोग दें, अपने मन से सभी को दुआएं दें, शुभ भावनाएं दें। बाबा ने कहा है कि जब तुम विश्व के ग्लोब को सकाश देते हो, उन्हें शुभकामनाएं देते हो, शुभ भावनाएं देते हो, तो रिटर्न में उनकी दुआएं तुम्हें प्राप्त होती हैं, और वो दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, वो दुआएं तुम्हें हल्का कर देती हैं, वो दुआएं तुम्हें सुख प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। और सृष्टि का ये नियम ही है ना, जैसा देंगे वैसा मिलेगा। और हमारे पास ये सुंदर अवसर बाबा ने दिया है संसार को सहयोग देने का, संसार को सकाश देने का, इसीलिए सकाश जरूर दिया करें। ये एक बहुत बड़ा सहयोग है विश्व की आत्माओं को। जब भी योग में बैठे, तब भी, चलते फिरते भी, आप सारे संसार की आत्माओं को सकाश दें। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, विश्व का ग्लोब सामने आया, सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सभी शांत हो, सुखी हो, आनंदित हो, सबका संकल्प या सबका मन एक परमात्मा से जुड़ जाए, ऐसी शुभ भावनाओं के सकाश हम अवश्य दिया करें। ये सहयोग संसार को हम आत्माओं से चाहिए, क्योंकि आधार मूर्त है ना। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, तुम आधार मूर्त हो और संसार को बदलने का जो जिम्मेवारी है, जो बीड़ा है, वो बाबा ने तुम्हारे ऊपर रखा है। तो हम आधार मूर्त आत्मा जैसे संकल्प करेंगे, जैसे वाइब्रेशन देंगे, वही वाइब्रेशन उन आत्माओं तक जाएगा और उनकी स्थिति वैसी बनेगी। इसीलिए सी अर्थात कोऑपरेट करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे किसी से भी, ठीक है। सबसे कंपैरिजन बंद और सहयोग देना शुरू। फिर बी अर्थात बैलेंस। बैलेंस बहुत जरूरी है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग प्राप्त होती है। शुरू शुरू में जब हम आए थे ज्ञान में तो हमारा जीवन कितना आनंद से भरा हुआ रहता था, उड़ते रहते थे, खुश रहते थे, हर प्रकार से हमें लगता था कि वाह पाना था सो पा लिया, अब कुछ और बाकी नहीं रहा है। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े कहां कमी आ गई, बैलेंस में कमी आ गई, सेवाएं बढ़ती चली गई और स्व थोड़ा पीछे होता चला गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्व और सेवा दोनों को साथ साथ लेकर के चलो। सेवा से हमें खुशी जरूर प्राप्त होती है, लेकिन जो स्व की स्थिति है, अचल अडोल स्थिति है, स्व में स्थित होने का जो आनंद है, जो सुकून है, वो सेवा से प्राप्त नहीं हो पाते। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसीलिए स्व में स्थित होकर के बाबा ने सेवा करना सिखाया है और ये भी कहा है कि जिस सेवा में डिस्टर्बेंस हो रही हो, जिस सेवा में सुख प्राप्त ना हो रहा हो, वो सेवा सेवा नहीं है। और सेवा को सेवा बनाना हमारे हाथ में है जब हम स्व स्थिति में स्थित होकर के ये करते हैं। इसीलिए बैलेंस जरूर लाएं। बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में ये कह चुके हैं कि जैसे रात रात भर जाग करके तुम सेवा करते हो, सेवा पर ध्यान देते हो, वैसे ही क्या रात रात भर जाग करके स्व पर भी ध्यान देते हो, स्व पुरुषार्थ भी करते हो? कितनी गहरी सी बात है ना, चेकिंग की बात है। सेवा के लिए हम रात भर जागते हैं, क्या स्व उन्नति के लिए रात भर जागते हैं? नींद आ जाती है, राइट? नहीं, रात भर जागने का भाव ये नहीं है कि आप आज रात भर जागें, आप कोई कमरे में ना जाए, सब बाबा के रूम में जम जाएं, शांति स्तंभ पे जम जाएं। भाव, जितना इंपॉर्टेंस हम सेवा को देते हैं, क्या सचमुच उतनी ही इंपॉर्टेंस हम अपनी स्व उन्नति को देते हैं? सेवा के लिए हम कितनी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, माइन्यूटली हम प्लान करते हैं कि यहां ये चीज लगनी चाहिए, ये दरी हो, ऐसा कंबल हो, ऐसी चादरें हो या ऐसा कर्टन हो, कितनी माइन्यूटली हम लोग प्लानिंग करते हैं? क्या इतनी ही माइन्यूटली, इतनी ही सूक्ष्मता से अपनी स्व स्थिति के लिए हम प्लान करते हैं? क्या प्लान है इस वर्ष का मेरे पास, कि सारे वर्ष मुझे क्या करना है? या मधुबन में मैं हूं तो मेरे पास क्या प्लान है कि मुझे मधुबन में रहते हुए क्या अचीव करके जाना है? प्लानिंग है स्व उन्नति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दादी जानकी जी से ये पूछा गया कि दादी आप सेवा और स्व उन्नति को कितना कितना प्रतिशत देते हैं? तो दादी ने कहा 90% मैं अपनी स्व उन्नति पे ध्यान देती हूं, 10% सेवा में देती हूं। जबकि हम देखते हैं कि दादी सारे दिन ही सेवा में लगी रहती हैं, स्टिल वो ये कहती अंदर मैं अपनी स्व उन्नति पर, अपनी स्व पर ध्यान देती हूं। और स्व पर ध्यान है, इसीलिए तो दादी ने सेंचुरी लगाया ना। हम सबको भी यदि सेंचुरी लगाना है, सेंचुरी मारना चाहते हैं ना सभी, या नहीं, या 10 रन या 15 रन में ही आउट हो जाना ठीक है? क्या विचार है भाइयों का? सेंचुरी लगाएंगे ना, जो सेंचुरी लगाता है उसकी वाहवाही होती है, वो मैन ऑफ द मैच होता है, राइट? तो हम भी सेंचुरी लगाए ना, सेंचुरी तन की हो या ना हो, लेकिन अभी रहते हुए इस जीवन का तो संपूर्ण आनंद लें, और उसके लिए स्व पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए बैलेंस, स्व पर ध्यान मेरा जरूर हो, लॉ और लॉ का भी एक बैलेंस अंदर होना चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, कई बार माताएं, कुछ माताएं जो बहुत भोली होती हैं, वो बाबा से पूछा करते थे कि बाबा क्या करें कि पति जो है विख मांगता है, विष मांगता है, अर्थात विकार के लिए कहता है, अब यदि हमें विकार नहीं देते उसको तो वो नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और आप तो कहते हो कि आप तो कहते हो कि सबको खुशी दो, और हम जब विष नहीं देते हैं तो वो दुखी हो जाता है। तो क्या करें माताएं, क्या करें? बाबा ने कहा सबको खुशी देना है, यदि विष नहीं देते हैं तो वो दुखी हो जाता है, तो क्या करें, क्या करें माताओं, क्या दुखी होने दें कि भैया तो दुखी होता रहे, आपसे हमें क्या मतलब है ऐसे बाबा ने यही बात कही, ये विष देना सुख देना नहीं है, दुख देना है। हा? तो हमें ये जो चीज है उसे भी समझना है कि क्या सुख देना है और क्या दुख देना है। यहां लव और लॉ का बैलेंस यही है कि कहां प्यार और कहां नियम। एक मोटी सी ये बात थी, लेकिन फिर भी हमें संगठन में भी रहते हुए ये जरूर देखना चाहिए कि कहां प्यार और कहां नियम। कई बार नियमों को तोड़ करके भी हम प्यार ज्यादा दे देते हैं तो वो भी दुख का कारण बन जाता है, वो भी बंधन बन जाता है। इसीलिए एक बैलेंस, न केवल स्व उन्नति और सेवा का, लेकिन साथ साथ लॉ और लॉ का भी बैलेंस। ये बैलेंस ब्लेसिंग दिलाएगा हम लोगों को, और जितनी ब्लेसिंग मिलेगी उतनी ज्यादा आत्मा हल्की रहेगी, उड़ती रहेगी, सुखी रहेगी। और लास्ट वन ए, ए अर्थात अटेनमेंट्स, अर्थात प्राप्तियां। बाबा ने कहा जितनी तुम अपनी प्राप्तियों को याद करोगे उतना ज्यादा सुखी रहोगे, उतना ज्यादा तुम्हें खुशी प्राप्त होगी। प्राप्तियों को याद करना यह हमें खुशी देता है। कौन मिला है हमें और हमें क्या मिल गया है, कौन मिला और क्या मिला, ये स्मृति ही हमें सुख देती है, हमें खुशी प्रदान करती रहती है। तो बाबा से हमें क्या क्या प्राप्त हो गया है इसकी लिस्ट बनाई है सभी ने, लिस्ट बनाए बाबा ने हमें क्या क्या प्रदान किया है, क्या क्या मिला बाबा से। बाबा से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, बाबा से हमें खुशी प्राप्त हुई है, और बाबा से क्या मिला है, बाबा से हमें सर्व शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, और शांति मिली हुई है, और पवित्रता और योग का वरदान मिला है, और क्या मिला है बाबा से, बाबा से मदद मिली, इतना सुंदर परिवार मिला, और क्या अनकंडीशनल प्यार मिला। भाइयों को क्या मिला, भाइयों को क्या मिला, सब माताओं को ही मिला नहीं जी, स्वर्ग की बादशाही मिलने वाली है, राइट। और क्या मिला, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का अवसर मिला, और बाबा का साथ मिला, सर्व संबंधों से अनुभूति हमें प्राप्त हुई, और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ। बाबा ने एक तो जनरल हमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ये सारी चीजें जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली भी बाबा ने हम लोगों को कुछ दिया है, दिया है या नहीं दिया है, किस किस को दिया है जरा हाथ उठाए, सभी को दिया है ना। तो पर्सनल बाबा ने जो आपको कान में कुछ दिया है, कान में भी बाबा कुछ कहते हैं ना, पर्सनल बाबा हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ये स्पेशल तेरे लिए है, कहते हैं या नहीं कहते, कहते हैं। और हम सबको इस चीज का अनुभव है कि बाबा व्यक्तिगत रूप से हमारी बहुत मदद करते हैं, पर्सनली बाबा ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं। कोई उन चीजों को बताता है, कोई नहीं बताता, व्यक्तिगत रखने वाली चीजें भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन चीजों को भी याद करके हमें बाबा की याद में, बाबा के प्यार में डूबना है, और वो चीजें हमें बहुत ज्यादा सुकून और खुशी प्रदान करती हैं कि बाबा यदि नहीं होते तो मैं कहां होता, बाबा ने मेरे जीवन में मुझे कितनी मदद प्रदान की है, कहां कहां मुझे गिरने से बचाया है, मुझसे कई बार गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को भी बाबा ने कभी अपने चित पर नहीं रखा, नजरअंदाज कर दिया और मुझे प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया, मेरी महिमा की कि नहीं नहीं बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत योग्य हो, तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो, तुम ये हो वो हो। बाबा ने ये बातें कही। जब इन बातों को हम याद करते हैं बाबा के लिए प्यार भी उमड़ता है और साथ ही खुशी भी होती है। तो इसलिए अपने उन खजानों को, जैसे बाबा कहते हैं कि जो बहुत बड़ा रईस होता है, जिसके घर में बहुत खजाना होता है या बहुत सारे उसने जेवर रखे होते हैं, माताएं भी जब जेवर रखती हैं बीच बीच में खोल के देखती हैं ना कि मेरे पास कितने सारे जेवर है, कान वाला कहाँ पे है, नाक वाला कितना है, गले वाला कितना है, सोने का है, चांदी का कितना है और कितने हीरे वाले भी रखे हैं, तो देखते हैं तो खुशी होती है ना। तो वैसे ही हमें जो बाबा ने दिया है, पर्सनल हो या फिर जनरल सबको मिला है, उन प्राप्तियों को जितना ज्यादा हम देखते हैं उतना ज्यादा हमें खुशी प्राप्त होती है, उतना ज्यादा हमें आनंद प्राप्त होता है। इसलिए एक तो बाबा ने जो दिया है, कौन मिला है, क्या मिला है, के साथ साथ अपनी इन प्राप्तियों को हम जितना ज्यादा चिंतन में लाएंगे, खुशी में झूमते रहेंगे, मन डांस करता रहेगा। जैसे किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या करेगा वो? नींद उड़ जाएगी। आप लोगों की उड़ी है कि नहीं? या अच्छी नींद आ रही है? नींद उड़ना अर्थात लगे रहना ना, सतत एक लगन, एक पुरुषार्थ के लिए, एक तीव्र पुरुषार्थ के लिए उत्कंठा बनी रहे। लेकिन वो चीज, जैसे किसी को बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाए तो वो खुशी में डांस करता रहता है, वही उसी डांस की बात बाबा ने पहली मुरली में भी कही थी कि मन डांस करता रहे, और इस मुरली में भी बाबा ने वही बात कही कि खुश रहो और सबको खुशियां बांटते रहो। तो अपनी ये प्राप्तियां हमें खुशी में डांस कराती रहती हैं, और साथ ही जितना मिलन होता रहता है बाबा के साथ उतना हम डांस करते रहते हैं। यदि बाबा के साथ मिलन हो रहा है, अपने भविष्य को हम याद कर रहे हैं कि अब हम कहां जाने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, जैसे बाबा इसी हॉल में डांस किया करते थे, दादी जानकी जी सुनाती है ना कि मैं यहां से गुजर रही थी, देखा कि बाबा डांस कर रहे हैं, और जब आई पूछा तो बाबा ने कहा कि बस बच्ची अब जाकर के मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूं, मिचनू श्री कृष्ण बनने वाला हूं। भविष्य का नशा, मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, ये नशा हमें खुशी में डांस कराता है, आनंद में डांस कराता है। तो ये हमें स्मृति जरूर रखनी है। साथ ही ये समय की जो प्राप्ति है, ये भी प्राप्ति है ना, संगम युग का समय हमारे लिए वरदान लेकर के आया है। ये ऐसा वरदान जिसमें हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं, पत्थर से पारस बन सकते हैं, अपना जितना लंबा श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। इस समय की पहचान मुझे मिली है, ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। तो भाग्य और भाग्य विधाता को ऐसे याद करते हुए मैं खुशी में डांस करती रहूं। तो चलिए सब योग में डांस करेंगे खुशी में। प्रेम से 2 घड़ी याद करने से न केवल शांति से भरना है बल्कि अब सुख से भी भरना है, खुशी से भी भरना है, क्योंकि साधना ही खुशी से भरेगी भी और खुशी का दान भी करना सिखाएगी। अंतिम बार एक सन्यासी बहुत अच्छी तरह साधना में मग्न थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए। एक लकड़हारा उधर से गुजर रहा था, उसने सोचा कि सन्यासी जी से मैं पूछूं कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, मैं कैसे सदा आनंदित रहूं, क्योंकि गरीबी है तो मैं दुखी हूं। उन्होंने पूछा सन्यासी से जो साधना कर रहे थे कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, दुखी हूं, कुछ धन की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। संत ने कहा यहां से राइट दिशा में जा और वहां एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे खोदना, तुझे कुछ तांबे के सिक्के मिलेंगे। गया, खोदा, तांबे के सिक्के मिले। 1 हफ्ते आनंद से रहा, पूरा हो गया तांबे का सिक्का। फिर आया, बोला अब क्या करूं? बोला लेफ्ट दिशा में चला जा, यहां खोदना, तुझे कुछ चांदी की अशर्फियां मिल जाएंगी। 1 महीने आनंदित रहा, फिर से वापस आ गया, कहा अब क्या करूं? उन्होंने कहा उस दिशा में जा, वहां तुझे सोने की अशर्फियां मिलेंगी। उसे लगा कि इसे तो सब पता है कि यहां चांदी गढ़ा है, यहां सोना गढ़ा है, यहां ये गढ़ा है, ये खुद क्यों नहीं निकाल लेता।
पूछा, महाराज आप क्यों खुद ये सारी जो धन संपदा निकाल नहीं लेते हैं और जीवन का आनंद लेते? तो उन्होंने कहा, देख ये सारी जो भौतिक चीजें हैं ना, ये टेम्परेरी खुशी देने वाले हैं। यहां जो बैठ करके मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं वो मुझे परमानेंट खुशी देने वाले हैं। तो हम सब टेम्परेरी खुशी की तरफ भागने वाले नहीं है, लेकिन परमानेंट खुशी कैसे मिलती है? बाबा की याद से, साधना से। और जितना हम अच्छी तरह साधना करेंगे ये चारों ही बातें, चाहे डिटैच होना हो सहज हो जाएगा, कोऑपरेट करना हो, दूसरों को सहयोग देना हो सहज हो जाएगा, बैलेंस रखना हमारे लिए इजी हो जाएगा, और साथ ही अपनी प्राप्तियों की खुमारी में रहना इजी हो जाएगा। तो बाबा की ये जो सुंदर सी प्रेरणा है कि खुश रहो और सबको खुशियां बांटते रहो, इस प्रेरणा को जब तक बाबा अगली बार आए अपने जीवन में पूरी तरह साकार करेंगे, केवल अगली बार आने तक नहीं लेकिन पूरे जीवन साकार करके रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता सभी आत्माओं को है। तो आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, सबको खुशियां बांटते रहें, ऐसी शुभकामना आप सबके लिए। ओम शांति।